सभोपदेशक अध्याय एक। सभोपदेशक की पुस्तक का आरंभ इस प्रकार से है। सभोपदेशक अध्याय एक पद एक। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। इस पद से पता चलता है कि इस पुस्तक का लेखक सुलेमान है। उपदेशक का मूल इब्रानी शब्द है कोहेलेथ, जिसका अनुवाद होगा वाद विवाद करने वाला। यरूशलेम का राजा दाऊद का पुत्र वाद विवाद करता है। इब्रानी का ये शब्द केवल सभोपदेशक की पुस्तक में ही आया है और इसका प्रयोग 7 बार किया है। सभोपदेशक अध्याय एक पद दो। उपदेशक या विवादी का ये वचन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। जीवन के अर्थ की खोज करने के बाद सुलेमान ने जो निष्कर्ष निकाला उसे वो प्रस्तुत कर रहा है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि सभोपदेशक की पुस्तक वास्तव में एक शारीरिक मनुष्य द्वारा जीवन के अर्थ की खोज है। इस पुस्तक में यहोवा शब्द नहीं आया है। वो परमेश्वर का नाम तो लेता है, परंतु जो शब्द वो परमेश्वर के लिए काम में ले रहा है वो है इलोहिम, अर्थात स्वामी। इलोहिम से उसका तात्पर्य है कोई परम शक्ति, ना कि यहोवा परमेश्वर। जो लोग परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पर सच में जानते हैं उनके लिए परमेश्वर यहोवा है या यीशु मसीह है। लेकिन यहां लेखक के विचार में परमेश्वर सांसारिक और व्यक्तिगत अनुभव से रहित है। जीवन के अर्थ की खोज में वो सब प्राकृतिक अनुभवों की खोज करता है। इस कारण इस पुस्तक में आत्मिकता को अनदेखा किया गया है। यहां मनुष्य को पशुओं के बराबर देखा जा रहा है और उसी स्तर पर वो जीवन के अर्थ, वो उद्देश्य की खोज कर रहा है। इसलिए वो कह रहा है कि जीवन व्यर्थ है और निराशा से पूर्ण है। जब मनुष्य को पशु रूप में देखा जाता है तो उसमें केवल चेतना और शरीर दो ही बातें होती हैं, परंतु आत्मा का संबंध परमेश्वर से नहीं होता। अतः पशु रूप में मनुष्य केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के प्रति सचेत होता है। वो केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के प्रयास में लगा रहता है। वो मनुष्य जो केवल शारीरिक स्तर पर जीवित रहता है वो केवल शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति खोजता है और वो स्वभाव से ही आत्मिकता को अस्वीकार करता है। ऐसा मनुष्य अंत में निरासार और निराशा से घिर जाता है। व्यर्थ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विलुप्त होना या नष्ट हो जाना। आप उसे पकड़ने जाते हैं और वो विलोप हो जाता है, जैसे मृग तृष्णा। वो एक खालीपन होता है। आत्मा का दुख ही आत्मा की निराशा है। मनुष्य त्रिएक प्राणी है। आज हमारी शिक्षा पद्धति की समस्या है कि वो मनुष्य के आत्मिक स्वरूप को अस्वीकार करती है। हमारी मानव आधारित शिक्षा पद्धति जो विकासवाद के सिद्धांत को अपना चुकी है वो मनुष्य को प्राणी अस्तित्व में पशु का परम विकास मानती है। अतः मनुष्य एक विकसित पशु है जिसमें चेतना उपस्थित है। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार न करना हमारी शिक्षा पद्धति की सबसे बड़ी भूल है। आप जब तक मनुष्य को उसके तीनों रूप में नहीं देखते, अर्थात शरीर, प्राण और आत्मा, तब तक आप जीवन को मानवीय स्तर पर ही अनुभव करेंगे और ऐसा जीवन निरासार और निराशा ही से भरा होगा। आज ऐसे लोग भी हैं जो मनुष्य को निराशा के साथ समझौता करने का परामर्श देकर बहुत पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य ने देखा है कि जीवन व्यर्थ है, जीवन का कोई मकसद नहीं है, जीवन खाली है, जीवन अर्थहीन है। मनुष्य निराशा, निरुत्साह और उदासी से घिरा हुआ है। वो ऐसे व्यक्तियों के पास जाता है जो उसे जीवन के बारे में बात करे और ये जानने के लिए पैसा देता है कि क्यों मैं जीवन को जीने के लायक नहीं पाता। ये इसलिए होता है क्योंकि हमने जीवन के तीसरे आयाम को नहीं जाना, आत्मिक स्तर का जीवन। यही है जहां जीवन का अर्थ मिलता है। ये सब मनुष्य के त्रिगुण स्वभाव से आता है। मनुष्य की कुछ शारीरिक आवश्यकताएं हैं। परमेश्वर ने मानव शरीर की रचना की है। मानव शरीर में कुछ ऐसी छोटी ग्रंथियां हैं जो रक्त में आपका स्राव प्रवाहित करती है, जिसके कारण मनुष्य में अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां होती है। इन ग्रंथियों से निकले रसायन मानव शरीर को संतुलन प्रदान करते हैं। ये रसायन मानव शरीर के संतुलन के लिए भिन्न भिन्न आवश्यकताएं उत्पन्न करते हैं, जैसे हवा, पानी, भोजन, मल निकास, मूत्र निकास और कामोत्तेजना इत्यादि की आवश्यकता आदि। ये सब परमेश्वर की रचना है। लेकिन मनुष्य में चेतना भी है। इस चेतना की भी अपनी आवश्यकताएं हैं, जैसे सुरक्षा, प्रेम, अपनाए जाने और सामाजिक संबंधों की आवश्यकता। यहां तक जो भी है वो मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान के आधार पर उचित है, परंतु वे जिस बात को अनदेखा कर रहे हैं उसकी मनुष्य को गहन आवश्यकता है जो उसकी आत्मा में उपस्थित है। ये आवश्यकता है परमेश्वर की। जैसा कि दाऊद ने कहा, भजन संहिता 42 पहला पद, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हांफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हांफता हूं। मनुष्य के अंदर परमेश्वर को जानने की जिज्ञासा होती है, परमेश्वर के साथ संगति करने की जिज्ञासा। मनुष्य के अंदर एक खालीपन होता है जिसे केवल परमेश्वर ही भर सकता है। यदि आप मनुष्य के आत्मिक स्वभाव का इनकार करते हैं तो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा की ये गहरी प्यास हमेशा उसका पीछा करती है। वो कहती है और भी कुछ है, इससे ज्यादा भी कुछ है। इसका परिणाम ये होता है कि मनुष्य अपने जीवन में असंतुष्ट ही रहता है। ये एक ऐसी प्यास है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, परंतु इसका एहसास होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। मैंने जीवन में अब तक जो कुछ भी अनुभव कर लिया है उससे बढ़कर भी कुछ तो है। इस कारण मैं निराश हो जाता हूं। यही अवस्था सुलेमान की थी। उसने लगभग 9 बार इस वाक्यांश का इस्तेमाल किया है, सूर्य के नीचे जीवन का अस्तित्व निराशाजनक है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निराशा हीन भावना को उत्पन्न करती है, और इसी तर्क के आधार पर मैं अपने आप को समझाने का प्रयास करता हूं कि मैं क्यों अब असंतुष्ट हूं और अपने आप में खाली खाली सा अनुभव करता हूं। ऐसा क्यों है कि मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं? क्या कारण है कि मुझे वो वस्तु नहीं मिल रही जिसकी कमी का आभास मुझे हो रहा है? और मैं अपने आप से कहता हूं, हो सकता है ये शिक्षा का अभाव है, मेरे पास पैसा और अधिक होना चाहिए, या यदि मैं अधिक आकर्षक दिखता, या मेरे बाल घने होते। इस प्रकार मैं अपने आप को समझाने के प्रयास में लगा रहता हूं कि मैं अपने जीवन में अवश्य ही उस पूर्ति को प्राप्त करने में असफल हूं। जो किसी तरह मेरे हाथ से निकल गई, मैं उसको पा न सका। इस प्रकार मैं जीवन में खालीपन का आभास करता हूं, क्योंकि मैं उसे पाने में असमर्थ हूं। मैं हीन भावना से ग्रस्त होकर अपने आप को उन कमियों के बारे में समझाने के प्रयास में लग जाता हूं जिन्हें पाने में मैं असमर्थ हूं। इसका परिणाम होता है कि मैं जिम्मेवारियों से भागने का मार्ग खोजने लगता हूं। मुझे अपने भीतर खालीपन लगने लगता है, मुझे असंतोष घेर लेता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी कुछ और चाहिए, परंतु मुझे वो प्राप्त नहीं होता। इस कारण मैं बच निकलना चाहता हूं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बचाव करता हूं। अप्रत्यक्ष रूप में मैं अपने आप से अपना बचाव करता हूं। मैं अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर लेता हूं और मैं उस स्थान पर आ जाता हूं जहां मैं अपने आप को मनुष्यों के सामने प्रकट करना नहीं चाहता हूं। मैं लोगों से दूर दूर रहने लगता हूं। मैं नहीं चाहता कि जिस सच्चाई को मैं जानता हूं उन्हें उस सच्चाई का पता चल जाए। अतः मैं अब एक झूठी छवि प्रस्तुत करने लगता हूं। मैं किसी भी स्थिति में किसी को भी अपना भेद लेने नहीं दूंगा। मैं अधिकाधिक अंतर्मुखी होता जाता हूं, अधिकाधिक मनुष्यों से दूर होता जाता हूं और अंत में ये स्थिति आ जाती है कि मैं ऋषि मुनियों के समान हो जाता हूं जो जंगलों में रहते हैं कि मनुष्य उन्हें ना देखें और किसी से बात करना ना पड़े, लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखना। ये समाज से भागने की चरम सीमा होती है। दूसरी ओर बच निकलने के प्रत्यक्ष मार्ग खोजने में ये होता है कि हर समय मैं कुछ न कुछ खाता रहता हूं कि मनुष्य से बचा रहूं, या मैं जुआरी बन जाता हूं, या शराबी बन जाता हूं, या नशे का आदि हो जाता हूं, या यौन अनुभवों में लीन होना चाहता हूं। ये सब बचाव के मार्ग है। इसमें ऐसा भी होता है कि मनुष्य अपनी नौकरियां बदलते रहता है। वो सोचता है, मैं इस स्थान में जाकर रहूं तो मैं खुश रहूंगा, सर्वोत्तम रमणीय स्थानों में सबसे अधिक आत्महत्या की घटनाएं होती है। उदाहरणार्थ हवाई द्वीप समूह। कारण यह है कि इसके बाद अब कहां जाऊं, क्योंकि आपके अपने विचार में तो आप स्वर्ग में गए थे, पृथ्वी के स्वर्ग में। आपका खालीपन हर जगह होगा। आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, आपकी आंतरिक पुकार सुनी नहीं गई, सब व्यर्थ ही व्यर्थ। मनुष्य जब इससे बचने का मार्ग अपनाता है तब उसमें दोषी अंतकरण उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उसका मन कहता है कि उसे हर समय खाते रहना नहीं चाहिए। मैं बहुत मोटा हूं, मैं मोटापे से घृणा करता हूं, मैं अपने आप को खाने से रोक नहीं पाता। मैंने बचाव के जो मार्ग अपनाए हैं, अनेक कारणों से मैं अपने आप को दोषी ठहराता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये उचित नहीं है। मैं जानता हूं कि उससे मुझे लाभ नहीं है, ये मेरा नाश कर रहा है, मेरे संबंधों का नाश कर रहा है, परंतु मैं उससे छुटकारा नहीं पा सकता। मैं उसका दास बन गया हूं। मेरा दोषी अंतकरण अब मुझे दंड देना चाहता है। ये बोध मेरी अवचेतना में प्रवेश करके मुझे पागल बना देता है कि वो मेरा दंड हो। दंड का अवचेतन आवेग पागलपन उत्पन्न करता है। मैं अपनी करनी के प्रति अपराधी होने का आभास करता हूं। मैं चाहता हूं कि कोई मुझे दंड दे जिससे मेरा अपराधी विवेक मुक्ति पाए। बचपन में तो आपके माता पिता ने आपके पागलपन के साथ निर्वाह कर लिया था। उन्होंने आपकी ताड़ना की जो आपके लिए सबसे उत्तम मनोवैज्ञानिक उपचार था, क्योंकि उससे आपका दोषी अंतकरण मुक्ति पा गया था। जब मुझे दंड दे दिया जाता है तब मुझे शांति मिलती है। ओह, अब मैं निरअपराध हूं। अब मैं अपने आप को दोषी नहीं मानता क्योंकि मुझे दंड मिल गया है। अब मैं स्वतंत्र हूं कि उसी विफलीकरण में पुनः लौट जाऊं और फिर वही चक्र आरंभ कर दूं। मेरी हीन भावना, मेरा भागना आदि, मेरे दोषी अंतकरण में, मेरे दंड में, मेरे विफलीकरण में, इस प्रकार जीवन चक्र चलता रहता है। सुलेमान यहां इन चक्रों का उल्लेख करेगा। इस अध्याय के प्रथम भाग में जीवन चक्रों में चलता हुआ प्रतीत होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये जीवन का चक्र है। आप सोचेंगे, क्या यही जीवन है? इस चक्कर को समाप्त करो, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता, मैं थक चुका हूं। सुलेमान भी इसी स्थिति में था। व्यर्थ, सब व्यर्थ है, सब निराशा है, ये सब आत्मिकता के इनकार से होता है, ये ईश्वर रहित मानवीय प्रवृत्ति के कारण होता है। इसमें मुझे मसीह यीशु का सुसमाचार मिलता है। जब मेरा व्यवहार असंतुलित होता है तब लोग मुझसे कहते हैं, आपके काम विचित्र है, आपका दिमाग सही नहीं है, आप डॉक्टर को दिखाइए। तब मैं किसी मनोचिकित्सक के पास जाता हूं जो मुझ पर कुछ परीक्षण करता है और ज्ञात करता है कि मैं किस बात के लिए दोषी मानता हूं। मनोचिकित्सक मुझसे बात करना आरंभ करता है। जब आप छोटे थे, क्या आपकी मां ने आपसे कहा था कि आपको झूठ नहीं बोलना है? क्या आपकी मां ने आपको सिखाया था कि धोखा नहीं देना चाहिए? देखिए, ये सब तो रूढ़िवादी नीति शास्त्र है, ये सब पुराने लोगों की बातें हैं। आपको इस सच्चाई जान लेना है कि परिस्थिति विशेष में झूठ बोलना अच्छा ही होता है। आपको इस बारे में दोष का बोध नहीं होना चाहिए। इस प्रकार वो आपको दोष से मुक्ति दिलाना चाहता है। आज तो ऐसा होता है कि वो आपको भीड़ में खड़ा करना चाहता है, वो आपको समझाना चाहता है कि आपके ऊपर रूढ़िवादी नैतिकता का नशा चढ़ा हुआ है। दूसरी ओर यीशु मसीह आकर मुझसे कहता है, हे मनुष्य, तू दोषी है। ये तो दुख की बात है, ये तो अच्छी बात नहीं है, पर मैं तुमसे प्रेम रखता हूं। मैंने तुम्हारे अपराध अपने ऊपर ले लिए थे जब मैं क्रूस पर मर गया था। मैंने तुम्हारे पाप और अपराध बोध अपने ऊपर ले लिए थे और उनका मूल्य भी चुकाया था। अब तुम यदि मुझ में विश्वास रखो और मुझ पर भरोसा रखो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। ऐसा उपचार तो कोई भी मनोवैज्ञानिक नहीं कर सकता कि अपराध बोध को मिटाकर साफ कर दे और अपराध बोध की इस भावना को मिटा दे। मसीह यीशु और उसका सुसमाचार ये काम करेगा। हीन भावना मिटाने के लिए ये संसार का सबसे महान उपचार है, परंतु सुसमाचार इससे अधिक कुछ करता है। वो वहां पहुंचता है जहां से समस्या का आरंभ होता है, हताशा। हम यीशु को पर्व के अंतिम दिन मंदिर में खड़े पुकारते सुनते हैं, योहन्ना 7:37-39 पद। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और योहन्ना कहता है, उसने ये वचन आत्मा के विषय में कहा। ये मनुष्य का तीसरा पहलू है जिसे वो अपने ज्ञान में आज इनकार कर रहा है और समाज में अव्यवस्था फैला रहा है। जिस हताशा का अनुभव मनुष्य कर रहा है उसका एकमात्र कारण है आत्मा का इनकार। यीशु कह रहा है, तुम्हारी आत्मा को परमेश्वर की प्यास है, मेरे पास आ, मेरे पास आकर पी। अतः हताशा, जहां से समस्या आरंभ हुई, यीशु मेरे पास आकर केवल मेरे जीवन को ही पूर्णता प्रदान नहीं करता, उस आत्मिक रिक्त स्थान को ही नहीं भर देता, वरन वो अनुग्रह उंडेलता ही रहता है जब तक कि मैं छलकने न लगूं। अब मेरा जीवन दूसरों के भरोसे नहीं रहता है, परंतु मेरा जीवन अब परमेश्वर के उस प्रेम और अनुग्रह को छलकाने लगता है जो उसने मुझ पर उंडेला है, और मेरा जीवन उमड़ता हुआ कटोरा बन जाता है, जैसा दाऊद ने कहा था, भजन संहिता 23:5 पद, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मैं अब उस आंतरिक पुकार और प्यास और हताशा के साथ नहीं रहता, परंतु अब मेरे जीवन में तृप्ति और परमेश्वर की परिपूर्णता आ जाती है, और मेरा जीवन परमेश्वर की भलाई और अनुग्रह को छलकाने लगता है। परमेश्वर मेरे जीवन में है क्योंकि मेरा जीवन परमेश्वर की भलाई और अनुग्रह से उमड़ रहा है। निष्कर्ष ये निकलता है कि जब आप जीवन को सुलेमान की तरह मानवीय स्तर पर देखते हैं, तब वास्तव में आप मनुष्य को पशु के समान देखते हैं। आप मनुष्य के आत्मिक पहलू का इनकार करते हैं जो मनुष्य को पशुओं से अलग, पशु जगत से ऊपर उठाता है। आप मनोवैज्ञानिक समस्याओं का भंडार इकट्ठा कर लेते हैं। आप ऐसे जीवन का प्रवेश द्वार खोलते हैं जो कभी तृप्त न होगा। व्यर्थ जीवन और उत्पीड़ित आत्मा। यहां हम सुलेमान की आंखों से सूर्य के नीचे का संसार देख रहे हैं जो परमेश्वर से अलग है। पशु स्तर पर मनुष्य, सर्वोच्च पशु स्तर पर मनुष्य आशा रहित होता है। जब तक मनुष्य आत्मिकता में प्रवेश नहीं करता और ईश्वरीय स्तर पर नहीं पहुंचता, तब तक उसमें परिपूर्ण, समृद्ध और तृप्त जीवन की आशा नहीं है। इसलिए सभा उपदेशक 1:3, उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? मनुष्य को देखो जो कुछ वो करता है, देखो तो उसके प्रयोजन और कठिन परिश्रम करने से क्या लाभ होता है? अब वो जीवन के चक्र की ओर घूमता है। ऐसा लगता है कि जीवन चक्र से चलता है, एक नीरस चक्र, आप इससे बच नहीं सकते। आप घुमावदार चक्र में हो और एक दिन इस चक्र से गुजर जाओगे। सभा उपदेशक 1:4-9 एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है, वो घूमती और बहती रहती है और चक्रों में लौट आती है। सब नदियां समुद्र में जा मिलती है तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती है उधर ही को वे फिर जाती है। सब बातें परिश्रम से भरी है, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। ना तो आंखें देखने से तृप्त होती है और ना कान सुनने से भरते हैं। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। जीवन चक्कर में चलता है, इतिहास अपने को दोहराता है और जीवन का चक्र चलता रहता है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी का पीछा करती है। सूर्य या पृथ्वी अपने कक्ष में परिक्रमा करते हैं और दोनों का एक दूसरे के साथ तालमेल है। हवा, नदियां और जीवन एक नीरस चक्र में चलते रहते हैं। सभा उपदेशक अध्याय 1:10। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सके कि देख ये नई है, ये तो प्राचीन युगों से वर्तमान थी। ऐसा सोचना बिल्कुल भी निराशाजनक नहीं है कि आपको परमेश्वर की नई प्रेरणा और प्रकाशन मिला है। ओह, ये कितनी बड़ी बात है कि इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं देखा। कितनी समझदारी की बात है। और फिर आप कुछ पुरानी पुस्तकों को, जिन्हें वर्षों पहले किसी संत पुरुष ने लिखा था, उठाकर देखें और वहां भी वही बात लिखी है जिसकी खोज अभी आपने की है। उसमें कुछ नया नहीं है। जीवन एक चक्र में चलता रहता है। सभा उपदेशक अध्याय 1:11। प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा और होने वाली बातों का भी स्मरण उनके बाद होने वालों को ना रहेगा। जीवन काल चक्रों में चलता रहता है। सभा उपदेशक अध्याय 1:12 से लेकर 14 तक। मैं उपदेशक, तर्क वितर्क करने वाला, यरूशलेम में इसराइल का राजा था, और मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच सोच कर मालूम करूं। ये बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे। मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं। ये आपके लिए एक मुख्य वाक्यांश है। इस संसार में मानवीय जीवन जो ईश्वरीय नहीं है। सभा उपदेशक अध्याय 1:14-15। देखो, वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है। जो टेढ़ा है वो सीधा नहीं हो सकता, और जितनी वस्तुओं में घटी है वे गिनी नहीं जाती। ये मानव स्तर का जीवन है जो टेढ़ा है। यदि किसी मनुष्य का जीवन टेढ़ा है तो उसे सीधा नहीं किया जा सकता। रोचक बात यह है कि यूनानी दार्शनिक इस निर्णय पर पहुंचे कि मनुष्य का उद्धार असंभव था, क्योंकि एकदम जब मनुष्य गलत हो जाए, दुष्ट हो जाए, उसके बदलने का कोई रास्ता नहीं रह जाता। जो टेढ़ा है वो सीधा नहीं हो सकता। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 3 में यीशु मसीह के शब्द पढ़ना अति रोचक है, जब वो नए राज्य की घोषणा करता है, या ये शब्द जो नबी के द्वारा परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रकट किए गए, जैसे शिमोन अथवा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला घोषणा कर रहा था। मसीह की आने वाली सेवकाई के बारे में उसने कहा, लूका 3:5। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है वो सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा। उद्धार यीशु मसीह के द्वारा है, लेकिन मानव स्तर पर नहीं, परंतु आत्मिक स्तर पर होगा। सभा उपदेशक 1:16। मैंने मन में कहा, मैं परमेश्वर की संगति में नहीं था, मैं परमेश्वर को नहीं खोज रहा था, मैं अपने हृदय की संगति में था और मैं संसारिक बुद्धि का प्रयोग कर रहा था। वह अतीन्द्रिय चिंतन में था। सभा उपदेशक पहला अध्याय पद 16 से लेकर 18 तक। देख, जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सभों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है, और मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि ये भी वायु को पकड़ना है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वो अपना दुख भी बढ़ाता है। मनुष्य के दार्शनिक विचारों के विकास के अध्ययन को देखना बड़ा ही रुचिकर है। दार्शनिक विचारों का इतिहास जिज्ञासा उत्पन्न करना है, क्योंकि आज दार्शनिक विचारों का जो विकास इतिहास में देखते हैं तो वो हमें अंत में अस्तित्ववाद में ले आता है। भलाई या बुराई विश्वव्यापी आधार नहीं है, उसमें सत्य का अनुभव व्यक्तिगत है, लेकिन यह अपरिवर्तनीय सच्चाई नहीं है। अपने अध्ययन से दार्शनिकों ने ये निर्णय निकाला कि सच से हताशा होती है और सच्चाई आपको हताशा में ले जाती है, इसलिए दार्शनिक अपने ही दर्शन से हताश हो जाते हैं और घोषणा करते हैं कि पूरी मानव जाति के लिए ये आवश्यक है कि वे अपने विश्वास को अवास्तविक बनाएं ताकि हताशा से बचे, जो केवल वास्तविकता से होती है। आपको अनुभव प्राप्त हो इस आशा से आपको अपने विश्वास में दृढ़ होना है कि विवेकशीलता या स्पष्टीकरण का कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए आज अतीन्द्रिय चिंतन इतना लोकप्रिय है। ये आत्मिक अनुभव में विश्वास की छलांग जो मानवीय ज्ञान से परे है, इसलिए पूर्वी धर्म आज लोकप्रिय है और लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है, क्योंकि वे आत्मिक अनुभव के ज्ञान के विश्वास में कूदे हैं, जो दर्शन शास्त्र ने हमें सिखाया। अवश्य ही अधिक ज्ञान से अधिक दुख होते हैं। वे लोग भी उसी निर्णय पर पहुंचे जब दर्शन शास्त्र का इतिहास आरंभ भी नहीं हुआ था। सुलेमान विचारों की सारी प्रणाली से गुजरा था। दर्शन शास्त्र का इतिहास इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सुलेमान ने 3000 वर्ष पहले इसका अनुभव कर लिया था कि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वो अपना दुख भी बढ़ाता है। बचपन से हम पढ़ाई की व्यर्थता को कुछ हद तक समझते थे। हम अपनी कॉपी में लिखा करते थे, जितना पढ़ोगे उतना अधिक सीखोगे, जितना अधिक सीखोगे उतना अधिक भूलोगे, अधिक भूलोगे कम ज्ञान प्राप्त होगा, अतः अध्ययन से क्या लाभ। लेकिन सुलेमान कहता है, जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वो अपना दुख भी बढ़ाता है।